কদম বিরাব কালিন্দির কদম বিরাব আমি কালিন্দির কুলে কেলি কদম বিরাব
কালিন্দির
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোরা
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল
শ্যাম গৌরী অঙ্গে নিবচয়া চন্দনীর গন্ধ
শ্যাম গৌরী অঙ্গে নিবচয়া চন্দনীর গন্ধ
আমি শ্যাম গৌরী অঙ্গে নিবচয়া চন্দনীর গন্ধ
শ্যাম গৌরী অঙ্গে
শ্যামর গুলাব কবি ঘেরিব মুখ চন্দ্র
শ্যামর গুলাব কবি ঘেরিব মুখ চন্দ্র
আর কাথিয়া মালতী মালা দিব তোহার গলে
কাথিয়া মালতী মালা দিব তোহার গলে
আমি কাথিয়া মালতী মালা দিব তোহার গলে ঘরে তুলিয়া দিব কপুর
তামুলে
ললিতা বিশাখায়ানি যত সখী বৃন্দ
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 আগায় করিব সেবা চরণার বৃন্দ
আগায় করিব সেবা চরণার বৃন্দ
আগায় করিব সেবা চরণার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদান
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের
অনুদান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদান
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদান
সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম
দাস
সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম
দাস সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস
জয় রাধে
আজ হম লোক কামে বন কি পরিক্রমা কে মেয়ে নিকলে হ্যাঁ কল হম লোগো নে গোপীনাথ জি কা দর্শন কিয়া আজ হম গোবিন্দ জি কা ভি দর্শন কর রহে হ্যাঁ ইসকে বাদ মে মদন মোহন জি নিয়ম তো এসা হি হোনা চাহিয়ে কি পহলে মদন মোহন জি কা হো আর ইসকে বাদ মে গোবিন্দ জি কা ইসকে বাদ মে গোপীনাথ কিন্তু হম লোক কা এসা হি হুয়া পহলে চরণ কা দর্শন ইসকে বাদ মে কমর কা বস্তাক্ষর কা ইসকে বাদ মে মুখারবিন্দ হম লোগো নে পহলে হি মুখারবিন্দ দর্শন কিয়া ইসকে বাদ মে কমর ইসকে বাদ মে বস্তাক্ষর ইসকে বাদ মে জ্যাসি প্রভু কি ইচ্ছা হম লোগ অভি বৃন্দা দেবী কে মন্দির মে আয়ে বৃন্দাবন দেবী কে নাম সে প্রসিদ্ধ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ মন্দির রাধা জি কা আর গোবিন্দ জি কা রাধা গোবিন্দ জি কা किंतु वृंदावन की, वृंदा देवी की कुछ विशेष महिमा है। ये वृंदा देवी मूलतः ये वृंदावन में रहती हैं। यहाँ पर सेवा कुंज है, यहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, यहाँ बंसी भट्ट है, जहाँ निधवन है, राधा कृष्ण का नित्य मिलन होता है, वहीं पर इनकी शादी है। राधिका जी का विवाह सुनते हैं जावट में है, ललिता जी, विशाखा इत्यादि जी का सब वहीं पर, रूप मंजरी जी की शादी वो जावट में है, वो सब सखियां वहीं पर उनकी सेवा करती हैं और सब समय राधा जी के भाव में विभावित रहती हैं, उनकी कृष्ण से मिलन कराती हैं। अब वृंदा जी वृंदावन में उनकी शादी हुई है, शादी माने ये सब जोग माया के द्वारा ऐसा अभिमान केवल है, किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं है, अभिमान केवल, सब गोपियों का एक ही समान, कृष्ण की भी ऐसी ही। वो काय विवह है राधा जी की, और जो आप तुलसी के रूप में देखते हैं वो ऐसे ही है जैसे कृष्ण के से नारायण निकले हैं, प्रकाश हैं, ऐसे राधा जी की ही एक मैनिफेस्टेशन, उन्हीं के एक प्रकाश विग्रह ये तुलसी जी हैं। तुलसी
बिंदा देवी का मैनिफेस्टेशन राधा जी के,
बिंदा देवी का, वैसे जैसे कृष्ण से नारायण हुए हैं ऐसे बिंदा देवी से ये तुलसी हैं। नारायण जी हो गए शिला शालग्राम, किस लिए? जगत पर कृपा करने के लिए, सरल सहज रूप में सबको मिल सके। उसी तरह से ये तुलसी जी उनकी प्रिया हैं, वैकुंठेश्वरी हैं, और वो वृक्ष का रूप धारण कर लिया, ये सहज सरल रूप में सबकी सेवा वो ग्रहण करके जगत के जीव का निस्तार कर सके। वृंदा जी सब समय वृंदावन में ही रहती हैं और राधा कृष्ण का नित्य मिलन कराती हैं। उनकी कोई एक ऐसी लीला नहीं है जिसमें वृंदा देवी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता न करने वाले, यहाँ तक कि वो सखी होकर के भी दूती भी होती हैं, इसलिए वृंदा जी को दूती भी कहते हैं। कभी कभी ललिता जी भी दूती हो जाती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी स्वयं राधिका जी भी दूती हो जाती हैं। दूती किस लिए? सब सखियों के साथ में मिलन कराने के लिए, तो वो दूती बन जाती है। दूतियों में बहुत तरह की दूती है, एक स्वयं दूती है और एक आप्त दूती। स्वयं दूती उन कृष्ण ही स्वयं है, राधिका जी स्वयं है, उनके नेत्र इत्यादि के द्वारा ये सब। और एक होता है आप्त दूती, आप्त दूती मैंने क्या,
अत्यंत निकट,
तो उसमें बीरा वृंदा, बीरा वृंदा और
बीरा वृंदा दोनों प्रधान है,
बीरा वृंदा और एक और है वृंदारिका, ये सब प्रधान है। सुबल भी उसमें है दूतों में, बंसी अपनी एक खास दूती है। इस तरह से बहुत से द्वितियों में ये बिरा वृंदा जी सबसे श्रेष्ठ हैं।
द्वितीय का नस
विशेष करके हम देखते हैं कि जब राधा कृष्ण का मिलन होता है, विशेष करके अभिसार इत्यादि करती हैं, उसमें वृंदा जी की ही अधिक प्रधानता रहती है। निशांत लीला में भी राधा कृष्ण स्वयं हैं, वृंदा जी सब पक्षियों को इंगित करती हैं कि राधा कृष्ण को अब जगाना चाहिए, उन्हीं के सहारे से सुंदर हवा बहने लगती है और वो वृंदावन के सुंदर कुसुमों के सुगंध को लेकर और भौरों के कान में जाती हैं, नाक में, और वो वहाँ से निकल करके गुंजार करने लगते हैं। कोयल के नाक में जाती है हवा, कोयल और कोयली दोनों उठ जाते हैं, और कुहू कुहू कर करके उनको जगाते हैं। मयूर और मयूरी के भी हृदय में प्रवेश करा करके प्रेरणा दे करके के का ये शब्द कराती हैं। उसे भी नहीं होता तो ताम्रचूड़ कौन है जिसके ऊपर में लाल लाल रहता है वो
मुर्गा
कहते हैं बंगला उर्दू में और हम लोग के हिंदी में है ताम्रचूड़। हिंदी में भी बंगला में भी ताम्रचूड़ तांबा का जैसा रंग यहाँ पर है और वो वेद पाठ करती है। छात्र लोग सवेरे वो लोग वेद पाठ करते हैं हर्ष स्वर से मध्य स्वर से प्लुत स्वर से और ये भी खूब जोर से अपने पंखों को हिला करके दो पैर पर खड़े हो करके और कु 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 एकदम ऐसे बात जैसे कि कृष्ण स्वर्ण। इस पर भी यदि नहीं उठते सुख सारी का चलता है परस्पर। सुख कृष्ण को उठा रहा है कौन दक्ष
विचक्षण
और
सुभा
सूक्ष्मधि और मंजुभाषिनी ऐसी सब सारियां उनको जगाती हैं तरह तरह से कह करके। इस प्रकार से बिंदा देवी के इंगित से ही सब कुछ होता है और अंत में जब नहीं होता तो एक कखटी बूढ़ी बंदरी वो जटिला जटिला जो ही कहती हैं बस इनकी लीला भंग हो जाती है। इस प्रकार से उनका मिलन कराती हैं अभिसार कराती हैं तरह तरह लीलाओं का सृजन करती हैं दोनों को आनंद से मिलन कराती हैं। इसलिए वृंदा जी के नाम पर ही ये वृंदावन हुआ। ये सारा साम्राज्य वृंदा देवी का था। वो बहुत ही सुंदर इसको रखती हैं उनके लीला के अनुकूल। इन्होंने पीछे से ये सब सारा राज्य दे दिया श्रीमती राधिका जी को। तब से ये वृंदावनेश्वरी हो गई और राधा जी के संबंध से कृष्ण को भी वृंदावनेश्वर कहते हैं। इस तरह से ये वृंदा जी का बहुत महत्व है। 84 कोस की भूमि जितने वन जितने जो कुछ है सबकी अधीश्वरी ये वृंदा जी थी। उन्होंने राधिका जी को दिया। इस तरह से जब कलयुग आया तो कलयुग के पहले चरण में गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन ये सब विग्रहों की विग्रह प्रकाशित हुए। पीछे से उनके साथ साथ में राधा जी भी प्रकाशित हुई तो राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन हैं तो सब समय उन्हीं के साथ में किंतु कभी बिछड़न कभी विरह कभी मिलन होता है। राधा जी चली गई थी जगन्नाथपुरी में वहाँ से पीछे से हमारे गोस्वामियों के प्रयत्न से फिर यहाँ पर आई और जन्नमा देवी खोद विग्रह को प्रकाशित किया राधा जी का और उनके बाएं तरफ में सर्वत्र ये रखे गए। कालांतर में कुछ औरंगजेब आया और जयपुर के नरेश से उसकी वाद विवाद हुआ झगड़ा हुआ। उन्होंने शिवाजी को जयपुर नरेश ने शिवाजी को मदद देकर के अपने जेलखाने से छुड़ा दिया। इस पर वो बिगड़ गया और जयपुर के द्वारा जितने भी निर्मित मंदिर इत्यादि थे उनको वो ध्वंस करने लग गया। उस समय में वृंदावन के जितने भी मंदिर में शिव विग्रह थे वो सब लोगों को जयपुर नरेश मान सिंह ने अपने रथ में बिठा करके और वहाँ से लेकर के सबको चले आए जैसे ये मंदिर जरूर तोड़ेगा बदमाश। इसलिए वो सबको ले लिया। लेकर के पहला पड़ाव राधा कुंड में हुआ वहाँ पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी हैं और दूसरा पड़ाव में डिग से होते हुए यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने रखा। यहाँ पर आने के बाद में तब फिर यहाँ से जयपुर के लिए ले जाने लगे। वृंदा जी यहाँ तक आई। अब बोली ये बॉर्डर से मैं अब वृंदावन से मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगी बस इसलिए वहाँ नहीं गई। इसलिए इनकी यहाँ पर प्रधानता है। वृंदा जी नहीं गई। जब वो फिर लौट करके आएंगे तब फिर मैं वृंदावन जाऊंगी। अब जितने भी मंदिर हैं इधर में ब्रज में यहाँ पर भी ये सब प्रतिभू विग्रह हैं। प्रतिभू माने क्या प्रतिनिधि। जैसे रसस्थली में कौन कृष्ण प्रधान थे, जो मूल थे ना, ना पीछे वाले जो बने, सभी मूल है। ऐसे ये मत समझिए जैसे वृंदावन में, यहाँ से वृंदावन से चले आए गोविंद गोपीनाथ राधा जी बिंदा जी, और फिर यहाँ आए, यहाँ सभी जयपुर चले गए, कोई नाथद्वार चला गया, कोई करौली चला गया, या ऐसा मत समझेंगे। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर वृंदावन। तो इसलिए वहाँ पर जो मूल विग्रह है और जो वृंदावन में प्रतिबिंब विग्रह हैं, राधा कुंड में जो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ हैं, यहाँ पर जो है गोविंद गोपीनाथ मदन, उन सभी ही वो नित्य है और प्रमुख है, इसमें कोई गौण और मुख्य नहीं है, केवल समझने का फेर है। इस तरह से ये बिंदा जी में हम लोग आए हैं, पहले बिंदा जी का दर्शन किया, इसके बाद में गोविंद जी का, राधा गोविंद जी का, और फिर मैम हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ में जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी यहाँ पर क्यों आए, एक तरह से ये द्वारकाधीश हैं और ये देवकी नंदन हैं, किंतु महाप्रभु जी को कुछ लीला करना पड़ा, राधा भाव में आविष्ट होकर के ये जगन्नाथपुरी में गए। क्यों गए, वृंदावन आने की तैयारी थी, किंतु नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बहका करके और जगन्नाथपुरी में ले गए। सची मैया ने भी ऐसी प्रार्थना, क्यों बहकाया, आ रहे थे वृंदावन में, देखा जैसे यदि वृंदावन में जाएंगे इनकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, राधा भाव का आस्वादन नहीं कर सकेंगे, उनकी मध्यमाओं का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। क्यों, वहां जाएंगे और देखेंगे गोवर्धन को, देखेंगे कालिंदी को, देखेंगे वृंदावन को, और अपने लीलाओं के स्थान को देख करके इनको आविष्ट हो जाएगा, ये कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, बस लीला नहीं होगी। इसलिए वहां नहीं जा करके नित्यानंद प्रभु ने इधर से घुमा करके, वो गुरु तत्व है ना, इसलिए उनको जगन्नाथपुरी में लाए। किस लिए जगन्नाथपुरी में ले आए, इसलिए कि वहां के वैभव में पड़े रहेंगे और वहां पर फिर अनुभव करेंगे विरह, उस कंदरे में, कंदरा माने
गंभीरा।
यहाँ आएंगे राधा कुंड जाएंगे, देखेंगे ये राधा जी ही हैं, बरसाना में जाएंगे देखेंगे ये राधा जी हैं, भांडीर वन में जाएंगे देखेंगे ये राधा जी हैं, फिर वहां पर जाएंगे जावट में देखेंगे, कोकिला वन में सर्वत्र ही राधा कृष्ण की स्फूर्ति उनकी होगी, जब मैं कृष्ण हूं और ये राधा जी हैं, किंतु वहां पर जाने में ये सब स्फूर्ति नहीं होगी, और वो राधा भाव में डूब कर कृष्ण का ही, अपने का ही, अपने माधुरी को आस्वादन करेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ने उनको बहका करके देखा, जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, राधा भाव की इसमें नहीं आएगा, इसलिए उनको वहां पर भेज दिया। तब फिर वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यहाँ आए तो दो एक दिन में ही अत्यंत चंचल हो गए और उनका कृष्ण भाव प्रदीप्त होने लगा। अब दो एक दिन रहते तो मालूम हो जाता जी यही कृष्ण है, इसलिए फिर जल्दी से जल्दी फिर वहां का लेकर के चले गए। आज हम गोविंद जी के और बिंदा जी के मंदिर में आए हैं, कामे वन में आए हैं, हम उनसे प्रार्थना करें। इस बिंदा जी से क्या प्रार्थना करें, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्मी क्षेत्राश्च कामान वितरंगम बिंदा जी के चरण में मैं ही प्रार्थना करते हैं। अपने जो प्राण धन है, जुगल किशोर है, इन जुगल किशोर के चरणों में सदा के लिए हमारी भक्ति हो, विशेष करके राधा जी के चरणों में विशेष हमारी भक्ति हो, राधा जी की प्रिय सहेली हैं ये, इसलिए हमारे ऊपर में कृपा करें, काम्य वन में हमारी ये कामना पूर्ण हो, राधा जी की पाल्यदासी के रूप में जो हमारा आचार्य वर्गों की अभिलाषा है ये हमारी, यही कह करके हम वक्तव्य समाप्त करते हैं। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे पंडा जी के साथ में चलेंगे कामेश्वर। यदि यहाँ से आप लोग यदि जा सकते हैं तो 84 खंभा और मदन मोहन का मंदिर, यहाँ से थोड़े आगे जा करके जाना पड़ेगा, और जो इतना नहीं चल सकते हैं वो यहाँ से धीरे 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 हमारे साथ में, मैं भी नहीं चल सकता, इसलिए हमारे साथ साथ में आप कामेश्वर मंदिर में चलेंगे, वहीं पर धर्मराज इत्यादि का आख्यान है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, और ब्रह्मचारी लोग सब और नवयुवक नवज्योतियाँ ये सब लोग तेजी से जा कर के यदि चाहें तो मदन मोहन जी और 84 खंभा दर्शन करके आएँ और हम वहीं पर मिल जाएंगे कामेश्वर में, फिर कामेश्वर से हम लोग गौ गौ प्रमानंदे
मदन मोहन देव जी का मंदिर। श्री मदन मोहन की कथा आप लोग जानते हैं कि महाराज जी से आप लोगों ने श्रवण किया है, जबकि जयपुर नरेश मान सिंह औरंगजेब के आक्रमण से पहले ही उनके अत्याचार को, उनकी चिंताधारा को जान करके मंदिरों को खाली कराकर श्री मूर्तियों को यहाँ ब्रज से जयपुर ले गए। तो इसी रास्ते से होकर के गए तो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये गौड़िया के जो तीन ठाकुर हैं, तीन देवता, जो कि ब्रज के एकमात्र प्राणधन है। तो इस प्रकार के गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को ले गए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गौड़िया रे करी आचैन आत्मसात, गौड़ीय भक्तों को आत्मसात किया है, अपनाया है गौड़ीय को। श्री प्रभुपाद जी ने व्याख्या दी है, गौड़िया जाने जो की राधा जी के उपासक है, एकमात्र राधा जी के किंकर इत्तो दासित्व अभिमान रखने वाले ऐसे जो भक्तजन हैं, महाप्रभु जी के विचारधारा के अनुगत हैं, इसमें स्नातक हुए ऐसे जो गौड़ीय भक्तजन हैं, उन गौड़ीय भक्तों को आत्मसात किया। इस प्रकार से ये मदन मोहन जी जो है ब्रज में जब रहे हैं, वृंदावन में ऐसी कथाएं सुनी जाती है। मदन मोहन जी पहले वृंदावन में ही थे। श्री अद्वैताचार्य जब तीर्थ भ्रमण करते हुए आए तो मदन मोहन जी उनके साथ चल दिए। आगरे तक पहुंचने के बाद बोले कि मैं ब्रज छोड़ के जाऊंगा नहीं, तो बोले कि आपको आने की क्या जरूरत, चलिए। तब मथुरा में जा करके उनको रख दिया एक ब्राह्मण घर में। मदन मोहन जी वहीं पर छोटे बालक बन करके उनके ब्राह्मण ब्राह्मणी के प्रेम में वशभूत हो, छोटे बालक बन करके खेलते कूदते रहे। इस प्रकार वहीं पर सेवा पूजा ग्रहण करते हैं, बालक बने हुए हैं। इस ऐसे जो मदन मोहन जी जब किसी सनातन गोस्वामी पास ब्रज में आए, एक दिन माधुकरी कहने के लिए मथुरा में पहुंचे तो उस ब्राह्मण घर में देखा कि वह बालक मदना खेल बालक के साथ में गोली डंडा खेलते खेलते हार गए। इतने में दौड़ करके गोली लेकर भाग गए और मंदिर में घुस गए, जैसे कि मूर्ति के रूप में है ऐसे मूर्ति के रूप में बैठ गए। इतने में पुजारी जी आए, मंदिर में प्रवेश किया, वो बालक दूसरा बालक जो था घर का, वो दौड़ता हुआ जा रहा था मंदिर के अंदर गोली लेने के लिए। बोले कि कहाँ जा रहा है, अंदर मचा। बोले कि अरे मदना हमारे गोली लेकर के भाग गया। बोले कहाँ गोली, बोले हाथ में, देखा कि गोली है। तो ऐसे जो मदन मोहन जी हैं, जहाँ बालक बन करके खेलते, तो सनातन गोस्वामी जी गए, कई बार उन्होंने दर्शन किया। इस कथा प्रसंग में तो बहुत बड़ा प्रसंग है, सभी लोग जानते हैं। तो ब्राह्मणी के प्रेम में वशीभूत है, विफल है, तो वह मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के साथ चल पड़े और वृंदावन को आए, वृंदावन में रहे और वहीं पर रह करके अपनी सेवा पूजा स्वयं ही प्रकाश कर ली। सनातन गोस्वामी जी से, जबकि सनातन गोस्वामी जी ने उनको बिना नमक की रोटी खिलाई, केवल आटा की गोलियां बना करके, गोली बना करके उसको सेका और ऐसे दे दिया। तो दो चार दिन खाने के बाद में ठाकुर जी बोले नमक तो थोड़ा दे। तो जैसे ही नमक मांगा, उन्होंने कहा आज नमक कहाँ से लाऊं, कल कहेंगे सब्जी चाहिए, कल कहेंगे हमें मंदिर बना दो, पागल गए हैं, हमें पलंग का चाहिए, ये सब कहाँ से हम लाए, हमसे संभव नहीं है। इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने ठुकरा दिए। तो कृष्ण ने कहा कि यदि मैं व्यवस्था कर लूं, बोले ठीक है अपनी व्यवस्था कर लूं। तो अपने भक्तों के द्वारा ऐसे प्रेरणा दी जिन्होंने मदन मोहन मंदिर को बना दिया। ऐसे मदन मोहन जी वृंदावन के नित्य वृंदावन में नित्य सेवित पूजित होते। ये संबंध अभिधेय और प्रयोजन शास्त्रों में तीन बातें कही है। संबंध कृष्ण के साथ में हमारा क्या संपर्क है, उस संपर्क को गुरु जी स्थापित करा रहे हैं। भगवान के साथ में जीव का जो आत्मा का जो संबंध है, उस संबंध संपर्क को स्थापित करा रहे हैं। और नित्य ही उनके प्रति वह भाव वह रस स्थापित हो जाते हैं। इसलिए संबंध के देवता हैं मदन मोहन और अभिधेय के देवता गोविंद जी और प्रयोजन के गोपीनाथ जी। अभिधेय जाने साधन और प्रयोजन माने प्राप्ति। तो ये तीनों तो एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप होते हुए ऐसा क्यों विशेष वर्णन है, ये समझ में कुछ नहीं आता है। फिर विशेष रूप गोस्वामी पाद ने एक जगह दिखाया कि चरण कमल कृष्ण का दर्शन जब करें तब उनके पहले चरणों में जा करके प्रणाम करें, उनके चरण का अवलोकन करें। फिर चरण कमल का अवलोकन करते हुए अनंतर उनके जानो उरु युगल कटि देश नाभि वर्त नाभि आवर्तत उदर, इसके बाद वक्षस्थल, इसके पश्चात मुखार बिंद। तो दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रितम आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख परम धाम जगत धाम नमामित। दसवे में दसवां लक्षण जो है आश्रय तत्व, वो आश्रय कौन सा है कि श्री कृष्ण के मुखारविंद। तो मुखारविंद का दर्शन करके, प्रफुल्ल मुखारविंद का दर्शन करके भक्तों का नयन मन प्राण आनंद में विभोर हो जाता है, उसे में डूब जाता है। इसलिए कृष्ण दर्शन में श्री मुखारविंद में ही सबकी पहुंच है, प्रयोजन है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर चरण कमल से शुरू होता है और मुखारविंद तक पहुंचता है। और राधा जी के दर्शन में कहा है कि पहले मुखारविंद का दर्शन करें, फिर चरणों में जाकर के आश्रय। इसलिए अभी अभी वृंदा देवी मंदिर में महाराज जी ने बताया था कि इस बार की परिक्रमा में ऐसे क्यों हो गया उल्टा पलटा, यानी हम आश्रय के प्राधान्य में हम चल रहे हैं महाराज जी के अनुगत। तो इसलिए शक्ति तत्व में यही होता है कि पहले मुखारविंद से चरणों में ही आश्रय लेते। तो चरण कमल ही हमारे लिए आश्रय है। ऐसे ही प्रशोभान नंदनी कृपा करें, ये ब्रजधाम कृपा करें, लीलास्थल कृपा करें, हमें भी आत्मसात बना कर लें। वंशाकुल उत्तरवश कृपा सिंधु भई वचवचितानम पवन।
सब जगह में बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर, किंतु आज विशाल मंदिर भी कहीं कहीं पर गिर रहे हैं और नए नए सुंदर सुंदर सब मंदिर भी बन रहे हैं। इसको उनका देखिए कितना सुंदर विशाल मंदिर, पहले गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का वृंदावन में बड़ा बड़ा मंदिर था, आज वो भी गिरने लग गए हैं। राधा दामोदर जी का आधा गिर चुका है, मदन मोहन जी का भी आधा गिर चुका है, बाकी बिहार जी का देखे जी कैसा उत्कर्ष हो रहा है। बीच बीच में ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखे, यहाँ पर गरीब ब्राह्मण के घर में सेवा कर उनके लिए बड़ा मंदिर और ये सब कुछ विचार नहीं। यहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर किसी के हृदय में रहते हैं, किसी के देखिए किसी के घर में। अभी हम लोग आए थे कुछ दिन पहले, तो ये टूटा, ये और भी टूटा फूटा था, उससे पूरे और भी टूटा फूटा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हम, अब तो कुछ सुधर भी गया है और शायद मंदिर का रूप धीरे धीरे यहाँ पर भी ले लेगा। ये लोग बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं। बहुत से लोगों ने इनसे मांगा कि आप अपने ठाकुर जी को दे दीजिए, हम लोग मंदिर बनाएंगे खूब अच्छी तरह से, हम सूखी रोटी बेझर की रोटी खिलाएंगे, ठाकुर जी को नहीं देंगे। तो इसी तरह से सेवा होनी चाहिए। आज यहाँ पर देखिए कैसे पेनीलेस के रूप में होकर के और यहाँ पर सेवा ग्रहण कर, और हो सकता है बड़े बड़े मंदिरों में इतना प्रेम ना हो, कहीं पर नमक मांग रहे हैं ये मदन मोहन, और कहीं पर देख लीजिए कैसे कैसे हो रहे हैं। जगन्नाथ जी में श्रीनाथ जी में कैसी सेवा सुन, किंतु मैं समझता हूँ कि वो ऊपर की सेवा है। 650 से सेवा हो, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो उस सेवा का कोई भी मूल्य नहीं, और यदि प्रेम है तो बेझक की रोटी में ही कुछ सेवा न रहे, केवल लंगोटी पहना दिया और उनकी सेवा करें तो उसी सेवा से अत्यंत वशीभूत हो जाते हैं। हम लोग भी वैसे ही सेवा करने की चेष्टा करें। गौर प्रमानंद
Just now told that this temple was in very bad condition before 2-3 years when he came. And he mentioned that there are many temples like Jagannath temple and Nathadwar temple where Chappan Bhog, very opulent services offered to Lord. But if there is so much things offered and there is no love, so he might not accept it. But here, in the bhava of Sanatana Goswami, where he is asking for salt, so if we have love, and when we have not many things to offer, he will accept it. So Maharaj is requesting that we should pray for that type of service, where love is important. If we have love, the Lord will be merciful. Hare Krishna.
सामने नहीं बैठे थे हम, घास से बातचीत करेंगे ना, किस जिसको सुनना है आया, नहीं तो फिर आप चल रहे हैं, जिसको सुनना है वो आ गया है इधर सामने में, पीछे हमारा कभी मत बैठो।
महाराज सेज कम फ्रंट।
फिर भाई अभी तक उठा नहीं, सब सामने में जाओ तो बतलाएं। ब्रह्मचारी लोग सब समय आगे नहीं रहेंगे, उनको वहाँ से वृंदावन में मथुरा में भेज देंगे, यदि साहब साथ में आकर के कीर्तन नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। सब लोग यहाँ निकट में आकर के सुनेंगे, सेवा करेंगे, उत्साह से चलेंगे, कीर्तन करेंगे। हमको एक याद पड़ी, आते आते हम लोग बातचीत कर रहे थे, द्रौपदी जी की बात कर रहे थे, कृष्ण की बहन सुभद्रा जी ने, है ना, और सुभद्रा जी से कृष्ण अर्जुन की शादी हुई, और द्रौपदी जी एक तरफ में है, किंतु ये लोग प्यार किसको अधिक करते हैं, द्रौपदी को अर्जुन प्यार करते हैं अधिक ना सुभद्रा जी को,
द्रौपदी
जी को कर। ये अपनी बहन खास है सुभद्रा जी, उसको कभी सखी सहेली प्रिय सखी कहते हैं, और जैसे मधुर से प्रेम से मिलते हैं द्रौपदी जी से, वो मिलते हैं उनसे सुभद्रा जी से, यहाँ तक कि कृष्ण जितने प्यार से वो सत्यभामा और रुक्मिणी से मिलते हैं, हम समझते हैं कि उनसे कम नहीं। ऊपर से तो देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद उन लोगों से भी अधिक प्यार करते हैं सुभद्रा जी को, बड़े प्रेम से मिलते हैं, जहाँ जहाँ पुकारती हैं द्रौपदी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्यों ऐसा है? देखो एक और विशेषता, रामचंद्र जी के सीता को हरण करके ले गया रावण, ले गया ना, और अपने महल में जबरदस्ती अशोक वाटिका में उनको 90 दिन या और अधिक कुछ वहाँ पर रखा, इसलिए रामचंद्र जी ने तो वहीं पर उनको विदाई दे दिया, अब तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि रावण तुमको हरण करके ले गया था, तुम्हारे ऊपर में अब तुम अशुद्ध हो गए, यही तो भाव। और यदि किसी प्रकार से देवताओं के कहने से भी रखा तो अयोध्या में जा करके कुछ दिनों के बाद में सदा के लिए प्रत्याग कर दिया। फिर एक धोबी के, धोबी नहीं और भी सब लोग थे, अजय ये सीता जी वहाँ पर थी। इधर सुनो, तो सीता जी वहाँ पर थी, कोई विश्वास नहीं ये क्या है नहीं है, सीता जी के बातों पर विश्वास नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, पवन बोले, अग्नि बोले, तभी नहीं विश्वास किया। और धोबी इत्यादि के कहने से, दूषित लोग कहने से, असत लोग कहने से रामचंद्र जी ने पर विश्वास करके सीता जी को आजीवन त्याग दिया। इधर देखो, अब महाभारत काल में आ जाओ, द्रौपदी के समय जयद्रथ यहीं पर उनका हरण किया ना, रथ में बैठा करके अकेले लेकर के भाग रहा है। और रजस्व स्थिति में दुर्योधन दुशासन उनके कपड़े हटा रहे हैं और नंगी करके उनके गोद में बैठाएंगे, उसके जंगे पर बैठाएंगे। किंतु पांडवों ने द्रौपदी को छोड़ दिया कि नहीं, छोड़ने की कोई कल्पना हो सकती है, बल्कि और प्रेम से उनको गले से लगा लिया, कभी ऐसा मालूम नहीं हुआ। कितनी बार ऐसे प्रसंग आए हैं जो द्रौपदी के इच्छा विरुद्ध असुरों ने, जयद्रथ इत्यादि असुर ही हैं, ये सब असुर ही हैं, दुर्योधन इत्यादि। यहाँ तक कि द्रौपदी के साथ में और बड़े बड़े राजन्य वर्ग शादी करना चाहते थे, कर्ण भी शादी करना चाहता था, सबकी उसकी नज़र उन पर पड़ी थी, विशेषकर के स्वयंवर में, किंतु पांडवों ने इसके लिए छोड़ दिया। और भी एक कड़ी परीक्षा हुई, जब स्वयंवर में जीत लिया इन्होंने, तो हकदार कौन थे शादी के, अर्जुन के और मात्र अर्जुन इत्यादि आकर के ये आकर के कहा कुंती मैया से, मैया आज भिक्षा एक बड़ी सुंदर मिली है, तो उन्होंने कहा जाओ मिल करके सभी बांट करके खा लो। बतलाओ स्त्री बांटने की चीज है, ये कोई प्रसाद है ना क्या है, चीज है जो बांट करके खाएंगे। किंतु मैया के मुख से निकल गया। अर्जुन ने ये कहा जी मैं जीत कर लाया हूं, मैं ही इसका पति होऊंगा, कहा नहीं कहा। कुंती जी को जब मालूम पड़ा तो बड़ी योगिया ने रोने लग गई जो मैंने ये क्या कह दिया। किंतु अर्जुन ने कहा जैसे जो तुमने कही है वही हम मानेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। और लोगों की भी इच्छा नहीं थी, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, इनकी भी इच्छा नहीं थी, किंतु जो उनकी मैया से की इच्छा से, और कृष्ण ने इसका अनुमोदन किया जी हाँ ठीक है। किंतु किसी का प्रेम उनसे उसके द्वारा कम हुआ? द्रौपदी में कुछ ऐसे गुण थे। कुरुक्षेत्र में जब गई द्रौपदी जी और रानियां सब मिली, तो रानियों ने पूछा उनसे, अरे मैं, हम लोग 16,108 महिषियाँ और कृष्ण का मन नहीं रख सकती, उनका मन कहाँ पड़ा रहता है, दूसरी जगह, और हमें एक एक से सुंदर, विश्व की सबसे सुंदरी स्त्रियां हैं, गुणवती हैं, रूपवती हैं, शीलवती हैं, पतिव्रता हैं, और कृष्ण का मन बांध करके नहीं रख सकते, एक कृष्ण, और तुम पांच पतियों के मन को बांध करके रखती है, राज्य शासन कौन चलाता है? पांडव लोग नहीं चलाते, ये द्रौपदी, द्रौपदी जैसा कहती है वैसा शासन चलता है। दान इत्यादि कौन देता है? युधिष्ठिर महाराज जी को दान की समस्त चीजें उनको ठीक कर देती हैं और कहती है इनको ये दो, इनको ये दो, इनको सब, खाने पीने में चौका बर्तन जो कुछ है सब इनके अधीन, सेनाएं लड़ेंगी और उसका व्यूहार ये सब कौन रचना करता था, ये सब कुछ द्रौपदी करती, बड़ी लड़ाकू वीर भी थी, सब विषय में योग्य और निपुण थी, और सबसे बड़ी बात थी कृष्ण में एक निष्ठा उसकी भक्ति थी, प्रेम था, इसलिए पांडवों ने कभी नहीं सोचा जैसे सो कोई ले गया है, हरण करके ले गया, क्या लिया, चरित्र पर कभी भी संदेह नहीं हुआ, कृष्ण को भी उसके चरित्र पर कभी संदेह नहीं हुआ। इसलिए भारतीय महिलाओं में द्रौपदी का स्थान बहुत, किंतु ये गोपियों की चरण की धूली अपने को समझने में मुश्किल है इनको, ऐसा समझो, इसलिए द्रौपदी जी का नमन करते हैं, किंतु फिर भी गोपियां का जहां भाव है वहां पर विश्व में कोई भी उनके समानता नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग गोपियों को यहां पर हम नमस्कार करके प्रणाम करके हम चलते हैं। ये महाराज युधिष्ठिर का कहते हैं कि यह राज सिंहासन था, यहीं पर उनकी सभा बैठती थी, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे, किंतु उस समय में ये महल नहीं था मेरे समझ से। किस लिए? यदि महल उस समय में होता तो द्रौपदी एक साथ के लिए तरसती और दुर्वासा ऋषि को उसी को खा करके कृष्ण और तृप्त हो जाते। इसलिए उनके समय में ये महल यदि होता तो राजवैभव भी होता, तब तो उनको खिलाने में कोई बात नहीं होती। इसलिए उस समय नहीं था। पीछे से वो परीक्षित महाराज जी ने उनकी स्मृति में ये सब बनाया। बज्रनाम ने भी पीछे से हो सकता है, ये कृष्ण की स्मृति में, पांडवों की स्मृति में उन्होंने बनाया, क्योंकि पांडवों से उनका बहुत ही बंधुत्व था। जैसे भी प्राचीन कलाएं हैं, देखिए आजकल की कलाओं में ऐसा होना असंभव है। गवर्नमेंट इसकी रक्षा करने कितनी दूर करती है मालूम नहीं, किंतु ऐसे सब चीज़ों की सुरक्षा होनी चाहिए और इनका फिर से इन्हीं कलाओं को रखते हुए इनका निर्माण फिर उससे उस रूप में हो सके, तो ये मनमंट के रूप में यह रह सकता है, कुछ दिन और रह सकता है। इस सबकी ब्रज में रखवाली की जरूरत है। हरी धनाढ्य जो हैं अभी मध्यम अधिकारी से भी नीचे हैं, वो लोग इसकी देखभाल करें, और जो कृष्ण की भक्ति में तन्मय हो गए उनके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है, वो परमहंस हैं। गौ प्रमाण
बहुत कम जाते और जाते भी हैं तो शंका उनके मन में भरी रहती है कि हमारी कामना वासनाओं को हम कहाँ छोड़ें, कौन हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। इसलिए सामान्य हृदय की दुर्बलता को छोड़ नहीं पाते। अतः भागवत में भी कहा है शिव शक्ति युक्त सस्व त्रिलिंग गुण संतुष्टि हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। प्रकृति से अतीत निर्गुण तत्व भगवान श्रीहरि, इसलिए समस्त कामनाओं को छोड़कर निष्काम रूप से विशुद्ध रूप से भगवत प्रतिमूलक आराधना बहुत कम लोग ही किया करते हैं। अधिकांश लोग कामना वासना ले करके शिव जी के पास जाते हैं। इसलिए महादेव जी धाम के रक्षक बन करके यहाँ अवस्थान करें कि कामेश्वर महादेव हैं। काम माने समस्त प्रकार की कामनाएं, कृष्ण की जहाँ समस्त कामनाएं पूरी होती हैं, कृष्ण किरार बसती नगरी, जो कि चैतन्य चरतामृत में भी कहा है, वृषभानु कुमारी जिनके कृष्ण क्रीड़ा की वसती नगरी है, ऐसे ब्रज गोविंद के साथ में, सखाओं के साथ में, जो कि स्वयं रसो वही से होकर के रसास्वादन किया है, रस का अनुभव किया है, जिनकी इच्छाएं समस्त प्रकार से पूरी हुई, ऐसे इच्छाओं को ऐसे लीलाओं को कहने वाले श्याम सुंदर के ब्रजविलासी श्याम सुंदर के लीला रस का आस्वादन करने के लिए श्री कामेश्वर महादेव के रूप में श्री शिव जी यहाँ विराजमान है। शिव जी के तत्व तो आप लोगों ने श्रवण किया है कि शिव जी ऐसे ही तत्व हैं जो कि दूध से दही बनता है, परंतु दही फिर दूध नहीं बनेगा, परंतु दूध से ही दही। इसी प्रकार भगवान विष्णु के ही भी एक प्रकार जो शिव जी कभी किसी कल्पों में जब युग जीव नहीं मिलते हैं तब स्वयं भगवान विष्णु शिव के रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी कभी युग जीव में शिवत्व प्रदान करते हैं। आराध्य के रूप में है तो आराध्य के रूप में, दोनों तत्व नहीं। इस प्रकार ऐसे ही तत्व हैं जो कि विश्व ब्रह्मांड का आधार माना जाता है, अर्थात ये जो भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ है ये ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड का स्वरूप केवल लिंग के रूप में है, पिंडाकार गोलाकार लिंग, प्रकृति के साथ में ब्रह्मांड का जब संयोग हुआ, इस संयोग के द्वारा भगवान ने इस विराट को सृजन किया। इसलिए ये ब्रह्मांड का स्वरूप जो है लिंग स्वरूप है, अतः हम लोग सर्वत्र शिव जी के लिंग का दर्शन करते हैं, शिवलिंग है गोलाकार पिंड स्वरूप। दूसरी बात है, ऐसे एक तत्व हैं जिनके अंदर सब कुछ विराजमान है। संसार में सबसे परम पवित्र जो भुवन पावनी गंगा जी है, वो शिव जी के मस्तक पर है और उनके शरीर में जहाँ सबका पंचत्व हो जाता है, विलीन हो जाता है, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जो राख बन जाता है, ऐसे शशान के राख उनके शरीर में, और सर्प की माला अपने विभूषण बनाए और निरंतर राम नाम कृष्ण नाम जपते, पार्वती जी को कृष्ण कथा सुना रहे, ऋषि मुनियों को कृष्ण कथा सुनाते, इसलिए शिव कथित शास्त्र को आगम शास्त्र कहेंगे। और आगमों में सर्वत्र राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हुआ है, यहाँ तक कि राधा कृष्ण के अष्टकालीय लीलाओं का भी, बृहद गौतमीय तंत्र आदि शिव कथित शास्त्र। इस प्रकार हम देखते हैं श्री शिव जी संसार के समस्त वैभव को ठुकरा कर सब कुछ ठुकरा दिए, कहीं हिमालय में तो कहीं ब्रज क्षेत्र में, भगवान के जहाँ जहाँ लीला भूमि है, लीला स्थान है, तहाँ तहाँ विराजमान।